तफसीर देखेंगे आयत नंबर 54 से। औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھ دن میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، پھر کیا ہوتا ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اڑھاتا ہے رات پر دن کو کہ وہ اس کے پیچھے لگا آ رہا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کس بات کا اظہار ہے؟ کہ الا لہ الخلق والامر، سن لو کہ کام بھی اسی کا ہے پیدا کرنا اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے۔ پچھلی آیات میں قیامت کے دن پیش آنے والے عبرت انگیز اور سبق آموز واقعات کا تذکرہ تھا، اور پتہ کیا چلا کہ جتنی باتیں پیچھے بیان ہوئیں اس کا مقصد کوئی قصہ گوئی نہیں تھا بلکہ نصیحت لینا تھا۔ اب اس کے بعد اگلی چند آیات میں توحید کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ جہاں بھی آپ موت کی، جنت کی، جہنم کی بات پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد اکثر ایک یا ایک سے زائد آیتیں آپ کو توحید کی ضرور ملیں گی۔ اور یہی قرآن پاک کی خوبی ہے کہ دلوں میں اللہ کی بڑائی کا احساس اتنا بڑھا دو کہ دوسروں کی بڑائی کا احساس نکل جائے، اور اپنی بندگی کا احساس اتنا بڑھ جائے کہ انسان اس دنیا میں بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی جیے، اور آخرت کے اندر بھی اگر اس کو کچھ ملنا ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ملے گا۔ اس آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں دیکھیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہاں کہا ان ربکم، تمہارا رب ہے، اور رب کا لفظ ہم پیچھے کئی جگہ پڑھ چکے کہ رب یا رب تربیہ، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، نشو و نما کرنے والا، بڑھوتری کرنے والا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آپ کو کتنے نشان دکھیں گے کہ فطرت میں جتنی بھی چیزیں آپ کو اس کائنات میں دکھیں گی، وہ بیج سے لے کر درخت بننا، نطفے سے بچے کا بننا، چھوٹی سی چیز کا بڑے حصے میں بدلنا ہے۔ اس کے برعکس ایک مینوفیکچرنگ چیز ہوتی ہے۔ آپ مثال دیکھیے کہ یہ گلاس ہے، یہ گلاس ایک فیکٹری کا بنا ہوا ہے۔ یہ گلاس جس سانچے میں انہوں نے ڈھالا اتنا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ گلاس ایک سال سے بنا ہوا ہو، اتنا ہی ہے، اور اگلے 10 سال تک یہ گلاس اتنا ہی رہے گا۔ اگر اب کوئی چاہے کہ اس گلاس کو چھوٹا کر دے یا بڑا کر دے تو ممکن نہیں۔ کوئی آپ سے کہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ گلاس ایک سال پہلے اتنا تھا، پھر 1.5 سال کے بعد اتنا ہو گیا، پھر 2 سال کے بعد اتنا، اور یہاں تک پہنچنے میں اس کو 3 سال لگے، نہیں مانیں گے نا۔ لیکن آپ اپنی گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو دیکھ لیں، پیدا ہوتا ہے تو 1 فٹ، اور مہینوں میں پھر اس کا قد کس سے نکلتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے قد سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے رب، اللہ کی بنائی اور انسان کی بنائی میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں کئی مراحل سے گزر کر اپنی تکمیل پہ پہنچتی ہیں۔ ایک ننی سی کومپل سے ایک درخت کے بننے کے مناظر کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر بھی اللہ کی ربوبیت ہے۔ ہم جو دروازہ بنا دیتے ہیں اسی لکڑی سے بنا ہوا، وہ نہیں بڑا ہوگا اب کبھی، ہم خود کاٹیں، چھوٹا کریں، توڑ دیں، پھوڑ دیں، یہ درخت، یہ دروازے، یہ کھڑکیاں جتنی تھی اتنی تھی۔ لیکن ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، رب کی اس ربوبیت کو اگر ذہن میں رکھیں تو انسان کا سر جھک جاتا ہے کہ اتنا پیارا ہے وہ رب۔ کیا اس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا؟ یہ انداز آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہ دکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ چند سوال اٹھتے ہیں اس بات کو سن کر، اور خاص طور پہ ان کے ذہنوں میں تو بہت ہی اٹھتے ہیں جو قرآن کو ججمنٹل بن کے سنتے ہیں یا تنقیدی نظروں سے پڑھتے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو دیکھا کتنی باتیں ہیں اس بات میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 6 دن میں کیوں کیا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، कि वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो तो उसके लिए सिर्फ कुन कहता है और वो काम हो जाता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ने 6 दिन में पैदा किया? तो इस एतराज़ का जवाब क्या है? हज़रत सईद बिन जुबैर ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया, मुफस्सिर हैं, कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत तो है कि कुन से ये दुनिया पैदा कर देता, लेकिन उसने इंसानों को तदरीज सिखाई कि जो काम तदरीज के साथ, गौर व फिक्र के साथ, सोच विचार के साथ किया जाता है वो दुरुस्त है। और इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लम की वो हदीस भी है कि आपने फरमाया कि अल आजिलतु मिनश शैतान, बे सोचे समझे काम करना ये शैतान की तरफ से, इसको जल्दबाजी कहते हैं, जबकि कामों को गौर व फिक्र से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, घर से कदम निकालते से पहले सोचा जाए कि जाना किधर है। और अकलमंद होता ही वो है जो मंजिल को सामने रख कर कदम उठाता है। हमारी कौम का हाल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इल्ला माशाल्लाह, काम करने के लिए हूड़ मत करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना हूड़ मत, आपको कहा जाए कि ये टेबल बाहर मूव कर दें, फौरन उठेंगे 6 लोग, जोश जज्बात में लाएं, मैं करती हूँ, हम करते हैं, यहाँ से पकड़ के सारों को हटा हटू के टेबल जब वो बाहर डोर पे ले जाएंगे तो पता चलेगा कि डोर छोटा और टेबल बड़ा, फिर कोई इधर की डालेगा, कोई उधर की डालेगा, नतीजा होगा आखिर में फिर थक के बैठ जाएंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ और करना पड़ेगा। अकलमंदी क्या होती है कि कोई कदम उठाने से पहले उसका देख लिया जाए, ये होगा, पहले इसको नापा जाए, इसके बालिश ही नाप लें, आपके सिंची स्टेप नहीं, फिर वहाँ नापें, फिर ज़रा एंगल सेट करें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इंसानों को काम करने का तरीका सिखाया। एक दूसरा एतराज़ बड़े अक्लमंद लोगों ने किया, क्योंकि ज़्यादा अकल भी अच्छी नहीं होती, वो कहते हैं कि यहाँ बात आती है फी सित्तति अय्याम, और अय्याम यौम की जमा है, और यौम कहते हैं दिन को, और हमारी इस्तलाह में दिन कौन सा वक्त होता है? जब सूरज आता है और जाता है तो फिर दिन ख़त्म हो रहा होता है, यही मुराद है ना। कहते हैं जब सूरज और चांद थे ही नहीं तो फिर दिन कैसे बन गए? बात वाज है कि सूरज चांद तो बाद में बना, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इस कायनात को बना दिया, तो फिर जब सूरज और चांद था नहीं तो ये 6 दिनों का हिसाब कैसे लगा दिया गया? तो इसके लिए एक बात गौर से समझने की, और वो क्या है कि ऐसी आयात जिनका ताल्लुक इस दुनिया के बनाने के आगाज या इस दुनिया के इंजाम यानी क़यामत से हो, ये आयात मुतशबे आयात में से होती हैं, इनका ताल्लुक गैब के मामलात के साथ है। हमारा ऐसी बातों को सुनकर एक ही जवाब होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात ही इसको असल जानती है। दूसरी बात है कि ये दिन और वो दिन फ़र्क थे। क़यामत के एक दिन के बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक दिन 50,000 साल का होगा। अब आप क्या कहेंगे कि उस दिन फिर 50,000 साल तक सूरज निकला रहेगा, फिर अगला सवाल होगा हम नमाजें कितनी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अच्छा फिर रात भी इतनी लंबी होगी, फिर इतना सोएंगे। इस दुनिया को आप उस दुनिया के साथ तशबीह नहीं कर सकते। हाँ, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इन दोनों बातों को मिलाया कि दुनिया में तो दिन 24 घंटे का होता है और आखिरत में 50,000 साल का होता है, तो वो कहते हैं कि आयत में यौम से मुराद वक्त की वो मकदार है जो हमारे 1,000 साल के बराबर है। क्यास किया उस पर कि क़यामत के दिन चूँकि 50,000 साल का दिन है, हज़ारों गुना इधर से बड़ा होगा, तो वैसे ही होगा, और हमारे लिए तो बस यहाँ इतना ही काफ़ी है कि जो भी हो हमें क्या, हमें तो ये देखना है कि अल्लाह ने बनाई कितनी प्यारी कायनात, कैसी खूबसूरत कायनात बनाई है अल्लाह ताला ने। फिर एक तीसरी भी चीज़ देखें इस आयत में कि अगर अल्लाह ताला ये तदरीज रखे बगैर अचानक कुन के साथ कायनात बना देता ना, तो इसे एक शुबा लाहक होना था, और वो क्या था कि ये कायनात इत्तफाकी हादसे का नतीजा है। जैसे आज साइंस की ज़ुबान में ये मशगले दिए गए कि ऐसे ही हो गया, एक एक्सप्लोजर हुआ, बिग बैंग हुआ, ज़मीन फटी, ठंडी हो गई, गैसें थी, फिर वो जमी, फिर क्रस्ट बन गया, फिर इस तरह सूरज बन गया, फिर चांद बने, तो वो मकसद किधर जाएगा कि तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तो बार बार कह रहे लोगों हमने इस दुनिया को बेमकसद पैदा नहीं किया, मा खलक़ना समावाति वल अर्दा बातिला। तो इन सारी बातों से जो सोच मिलती है वो क्या है कि ये कायनात एक प्री प्लान थी, कोई इत्तफाक नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ कि चलो अब दुनिया बन गई है, चलो खाली पड़ी है, अब जाओ एक इंसान को बनाओ, फिर आदम को बना लो, फिर फरिश्तों से को सजदा नहीं करो, ये एक बहुत सोचा समझा इम्तिहान है। सुमस्तवाल अर्श, फिर अल्लाह ताला ने फिर अर्श पे करार पकड़ा। कैसे पकड़ा, क्या पकड़ा? अब हम अपने दुनिया के किसी अर्श को सोचें, बादशाह को सोचें, नहीं। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि ये बताएं कि ये इस तवाल अल अर्श का क्या मामला है भाई, कैसे बैठा हुआ अल्लाह ताला। अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो हर चीज़ को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इमाम मालिक ने इसके सवाल के जवाब में इतना खूबसूरत जुमला बोला कि आज भी मुफस्सरीन उसको अपनी अक्सर तफसीर में कोट करते हैं। क्या कहा इमाम मालिक ने? कहने लगे कि अल इस्तवाउ मालूम, हमें ये तो मालूम है कि अल्लाह ने इस्तवा किया, क्योंकि लिखा है कुरान पाक में आ गया कि सुमस्तवाल अलर्श वल कैफु गैरु माकूल, कैफियत क्या है, कैसे बैठा है, खड़ा है, कुर्सी पे बैठा है, टांग पे टांग रखी हुई है, माकूल अकल में नहीं है। गैरु माकूल भी आता है, बाज जगह उनका कौल आता है मजहूल, यानी जाहिर है हमें नहीं पता, अल्लाह ने नहीं बताया। वल ईमान बिही वाजिब, और इस बात पर ईमान लाना हम पे वाजिब है कि अल्लाह अर्श पे करार पकड़ता है। क्योंकि बाज़ लोगों ने इसकी तवीलात बड़ी की, नहीं इससे मुराद अल्लाह का इक्तदार है, गलबा है, सल्तनत है, नहीं हकीकत में अर्श है। आप इसको कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं कह सकते, जैसे ये मेज़ है, ये कुर्सी, इस तरह अर्श है। इसके दलाइल मिलते हैं, 7 दफ़ा कुरान पाक में इसका जिक्र आता है, और आखिर में कहते हैं कि बस सवाल अनहु बेदा, इसके बारे में सवाल करना बेदत है। और बाज़ रिवायात में आता है कि इतने गुस्से में कहने लगे, अगर आज के बाद तूने ये सवाल किया तो तुझे अपनी महफिल से निकाल दूंगा, भाग जा, क्योंकि तुम यहाँ इल्म के चटखारों के लिए नहीं आते। सवाल वो करो जिससे तुम्हारे अमल का ताल्लुक है। जितने बातिल फिरके गुजरे, जिसमें मोतज़िला, खवारिज, खारजी जिनको हम बोलते हैं, और इसी तरह के भटके हुए लोग, वो अल्लाह ताला की सिफात में गौर व फिक्र से बह गए। ये नहीं गौर किया उसने कहा क्या, करो क्या, बनाई क्यों दुनिया, उसी के बारे में गौर किया जाए। ऐसे जैसे उस्ताद कोई बात कहे कि ये करो ये ना करो, चले उस्ताद को एक तरफ ही कर दें, इतनी ज्यादा पसंदीदा बात ही नहीं लगती आज के दौर में कि उस्ताद भी कोई बात कहे और उसको माने। माँ बाप की बात ले लें, माँ बाप अपनी औलाद को कुछ कहते हैं, बच्चा अकलमंद कौन है कि माँ ने क्या कहा और उसकी हिकमत पता चले ना चले, बस मान जाए कि माँ ने कहा है तो कर ले, और कोई ये सवाल करने की बजाय माँ के बारे में ही आ जाए, आर यू श्योर यू आर माई मॉम, अबू आपने वाकई औरत से शादी की थी, कोई और औरत नहीं मिली कि जिसको मेरी माँ बनाते, तो माँ का हाथ उठेगा और थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। हाँ, काम से काम रखे। ऐसे लोग फिर बहक जाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फिर दावत देता है कि इस पे गौर ना करो, इस पे ना गौर करो कि वो कैसे, क्या हुआ, किस तरह बनाया। और बाज़ तफासीर और बाज़ दर्स, अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ इन्हीं बातों को प्रमोट करने पे होते हैं, ऐसे हुआ, फिर जो अकली नकली ज़ईफ़ और मन घड़त रिवायात पेश की जाती हैं उसमें ये हुआ। और ये बातें मज़े की बड़ी लगती हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर देना चाहूँ ना, मैं आपसे कहूँ अल्लाह ने दुनिया बनाई, फिर अल्लाह ने मिट्टी जमा की, फिर उधर से पहाड़ों के जर्रे आए, फिर ऐसे पानी जमा किया, आप एकदम खड़े हो जाएंगे जैसे स्टोरी सुनते ना, अच्छा फिर ऐसी चीज़ों में आप देखते हैं कि लोग हरकत भी नहीं करते, बिल्कुल उनको हर चीज़ मज़े की लगती है ना, जैसे एक स्टोरी टेलिंग होती है, फ़ायदा क्या होता है? आप देखें बच्चा स्टोरी सुनते सुनते सो जाता है, क्यों सोता है भला, आपको पता है? स्टोरी सुनते वक्त दिमाग नहीं इस्तेमाल होता, गौर नहीं करते। आप उस वक्त बच्चे को अगर हिसाब किताब के सवाल सिखाना शुरू कर दें तो वो रोने लग जाएगा, उसकी नींद ही उड़ जाएगी। हाँ, तो कुरान कहानियां सुनाने नहीं आया, ये गौर फिकर तदब्बुर गौर करो, युख्शिल लैलन नहारा, रात को उड़ा देता है दिन पर। कैसे इतना प्यारा दिन होता है और उसके ऊपर ऐसे रात की छतरी आती है, और जैसे वो हेलमेट नहीं होता, खोल दो तो आधा हिस्सा काला और आधा पीछे सफ़ेद, और जब उसको आंखों से आगे हटाना है तो उसको सफ़ेद के ऊपर ले जाते हो। कभी सोचो इतना बड़ा सूरज, इतनी बड़ा चांद, इतनी बड़ा दिन, इतना ये सब कुछ उसके हाथों में चला हुआ है, तुम किधर खड़े हो? यतलुबुहु हसीसा, वो उसको फौरन तलब कर लेता है जल्दी से। हसीस, हा सा, क्या रूट होगा इसका, नोट करें जरा देखें। नियत लुबु का तो पता है तो आलाम्बा, हसीसन का क्या रूट होना चाहिए? हा सा सा, हंसी सा, दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी, जैसे वो नहीं होता हेस्टीनेस, मुझे तो इस लफ्ज को पढ़ते ही जैसे इंग्लिश का एक लफ्ज आता है ना हेस्टली, भाग के जल्दी से, जरा देर नहीं करता। ये सिखाता है अल्लाह ताला कि जैसे रात अल्लाह का हुक्म मान के भागती हुई आती है, जैसे दिन अल्लाह का हुक्म मानते हुए आता है, तुम भी उसका हुक्म सुन के फौरन चल पड़ो। उठने में ही घंटा न लगा दिया करो, हाँ घुटने पे हाथ रखो, फिर सीधे हो जाओ, फिर उठो, नहीं एक्टिवली काम करो, भाग के करो, तेजी से करो, जैसे सूरज और चांद अल्लाह का हुक्म मानते हैं। इनको अल्लाह ने अकल नहीं दी, इसके बावजूद देखो काम कैसे करते हैं, और जिनको अकल दी है वो सोचने लग जाते हैं कहा क्यों है, क्यों कहा है। वह शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरात बि अम्रिही, सूरज चांद और सितारे उसके हुक्म के बंधे हुए हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन अल्लाह के आगे वो ऐसे हैं जैसे एक नुक्ता। मुसख्खरतुन की जमा है, जो चीज किसी के इख्तियार में आ चुकी हो, यानी इन चीजों को अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखा हुआ है। अलालखुल खल्कु, ये है असल बात अब इस आयत की, याद रखो, खबरदार जान लो। अला का लफ्ज ना ये धमकाने वाला डराने वाला एक जुमला होता है कि देखो सोच लो क्या कि लहुल खल्कु, खल्क भी उसकी है, मुराद क्या है कि खालिक भी वही है, और वला अमरू, और अमर भी उसका है। ये है वो चीज़ जिसमें लोगों ने फ़र्क करके शिर्क किया। खल्क से मुराद है खालिक होना, ये कायनात का क्रिएटर, क्रिएटर गॉड कह लें इसको, खल्क को। दुनिया में अक्सर लोगों ने अल्लाह को खालिक गॉड तो माना, क्रिएटर मानते हैं, यानी क्रिएटर गॉड को मानते हैं, लेकिन मसला जहाँ बिगड़ता है वो क्या है, अल्लाह ताला को हाकिम नहीं मानते, वाला अम्र उसका नहीं मानते, क्योंकि उसके बाद पाबंदियाँ लगती हैं, उसके बाद उसके ऊपर आके इंसान को कुछ ना कुछ अपने ऊपर जब्त करना पड़ता है। लोग कहते हैं ये मान लो कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन, सूरज चांद सितारे उसने बना दिए, अब आगे क्या हुआ, बस इसके बाद अब उसका इख्तियार नहीं है, उसने सारे मामलात पीर साहब को दे दिए, कोई बुजुर्ग साहब को दे दिए, कोई उसको दे दिए, कोई उसको दे दिए, और कायनात अब खुद से चल रही है। बस कहते हैं अल्लाह ने बनाई नहीं, वो तो एथियस्ट है, वो तो कहते हैं खुद ही बन गई, मिट्टी जमा हुई, पहाड़ बन गए, ऊपर बारिश पड़ी, वो जम गए, चलो मिट्टी बन गई, इसी तरह जर्रे छोटे छोटे मिलते गए और लोहा बन गया, वो उनको तो पीछे कर दीजिए, उसकी तो बात ही नहीं हम कर रहे। लेकिन जिन्होंने माना वो ये तो मानते हैं कि अल्लाह ने बना दिया, अब ये नहीं मानते कि अब उस अल्लाह के सामने हम उसके हुक्म को मानने वाले बन के खड़े हों। क्योंकि जब आप अल्लाह का हुक्म मानेंगे ना, हाकिम मानेंगे, अल्लाह का नाम है अल-हकम, अल-हाकिम, अल-हकम, अल-हकीम, तीन नाम है अल्लाह के, एक रूट से हाकिम, हकीम, हकम, क्या कि अब हुक्म भी उसका चलेगा, ये नहीं लोग मानते, क्योंकि इसके बाद फिर पाबंदियां लगती हैं, इसके बाद अकल को उसके आगे झुकाना पड़ता है, इसके बाद डूज एंड डोंट्स उससे पूछ के लेने पड़ते हैं, इसके बाद फिर अल्लाह ताला से जिंदगी के तरीके पूछने पड़ते हैं। लोग इसमें बहुत शक करते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ मिसालें दे रहे हैं कि देखो खालिक भी हूँ, हाकिम भी हूँ। आप देखिए कोई एक बंदा गाड़ी बनाता है, मिसाल दे रही हूँ सिर्फ, वो उस गाड़ी का क्रिएटर हो गया ना, कंपनी बनाई, अब जो ही वो गाड़ी आपने खरीद ली, क्या आप उस गाड़ी पे उनका कोई कंट्रोल रहा, नहीं रहा, आपने कोई चीज बनाई बाद में दे दी किसी को, खत्म हो गया ना कंट्रोल। लेकिन जो चीज आप बनाएं और आपके कंट्रोल में भी हो, आपकी हो, उस पर आपका हुक्म चलता है ना। सही तरीका क्या अल्लाह के बारे में कि खालिक भी है और हुक्म भी उसी का, ना सिर्फ ये कि इस कायनात को बनाया है बल्कि इस कायनात के ऊपर उसका निजाम भी चलता है, हुक्म उसका चलता है, लोग उससे पूछेंगे, उससे पूछ के जिंदगी गुजारेंगे, और जो उसके हुक्मों के मुताबिक चलेगा वही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतों में होगा। और आप देखिए कि दो आलिम होते हैं, एक है आलिम शहादा, ये जो कायनात सूरज चांद सितारों का ना, ये आलिम शहादा है, इसमें अल्लाह ताला तदरीज के साथ काम करते हैं, 24 घंटे का रात दिन और बनाया 6 दिनों में, हमें भी ये सिखा दी, हम भी आलिम शहादा में सही है। इसीलिए आप देखिए कि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, लगली क्या मुश्किल था, कौन कहता और एक बच्चा बाहर आ जाता माँ के पास, नहीं था, अल्लाह ने आलम शहादा को तदरीज के साथ किया है, और तदरीज से काम करना अल्लाह की तरफ से ये पसंदीदा। दूसरा अमर होता है आलम अमर, जिसका दूसरा नाम है आलमुल गैब, योमैनून बिल गैब, अनसीन, इसका हम मुशाहिदा नहीं कर सकते। अब आलम शहादा जो है ना, सूरज चांद जो, इसका नॉलेज हमें मिलता है साइंस से, बस है ना, ज्योमेट्री से देख लें, सब चीज़ों से देखें, हाँ, लेकिन आलम अमर की चीजों को समझने के लिए वही के इल्म की जरूरत होती है। इसीलिए पहली सिफत मुत्तकियों की कह दी कि अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, गैब पर ईमान लाना होगा। मिसाल दूंगी कि आप गैलेक्सीज को टेलीस्कोप से देख सकते हैं ना, कितनी दूर हैं आपसे, सूरज, सैारे, सितारे आप देख लेते हैं ना, लेकिन आपके और मेरे किरामन कातबीन है उनको हम किसी से नहीं देख सकते। कोई गैजेट बना लें, कोई बड़ी से बड़ी माइक्रोस्कोप बना लें, क़यामत तक हम अपने फरिश्तों को नहीं देख सकेंगे। फ़र्क है कि ये हमारा आलिमुल गैब है और सूरज सितारे जो हैं ये आलिमुल शहादा है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि आलिमे शहादा अकल से पता चल जाता है, वही से मालूम ना भी हो, लेकिन आलिमे अमर उसके लिए वही की ज़रूरत है। और जो आलिमे अमर है ना, वो टाइम एंड स्पेस से आज़ाद है। ये 6 दिनों का मसला ही ख़त्म हो जाता है। जिस तरह हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारी उम्र है 50-60 साल, 70 साल, फिर जब हम मर जाते हैं, मसलन आदम अलैहिस्सलाम को फौत हुए कितना वक्त हुआ, वो टाइम एंड स्पेस की लिमिट से निकल गए, अब उनका कुछ नहीं पता, वो कितनी सदियां गुजर गई, अब आज़ाद हो जाते हैं। ऐसे लोग फिर कुन फयाकून के ज़रिए से क़यामत के दिन उठेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी मिसालें हमें दे के समझा दिया कि तुम अल्लाह को अपना हाकिम मान लो, अल्लाह की बात को मानो और सोचो कि उसने तुम्हें पैदा क्यों किया और उसके हुक्म पे चलो। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, कितना प्यारा है वो रब्बुल आलमीन, हमने अपने रब को भी देखा ही नहीं। तबारक अलस बरका से है, बरकत बढ़ने को कहते हैं, बढ़ोतरी, कोई चीज़ हो थोड़ी लेकिन हो ज़्यादा जाए। आप कहते हैं ना आज खाने में बड़ी बरकत पड़ गई, पकाया था आपने 3 लोगों का, 4 का पकाया था और 10 लोग खा गए, माशाल्लाह बरकत पड़ी। ये है अल्लाह की ज़ात, वो आपके थोड़े से वक्त में बरकत डाल देता है, वो आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है, वो आपकी सेहत, जवानी, माल में बरकत डाल देता है, क्योंकि वो तबारक है। जिस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में आप लगाते जाएंगे उतनी उस चीज़ में बरकत आती जाएगी, और जिस चीज़ को आप अल्लाह के रास्ते से बचाते जाएंगे उसके अंदर बेबरकती आती जाएगी। हम कहते हैं कि हम अपना आप बचा रहे हैं, वो बचता नहीं, वो कोई और ले लेता है, वो माल हमारा कोई और ले जाएगा, वो हमारी सेहत, हमारी एनर्जी, हमारी तवानाइयाँ, वो सारी की सारी जो हैं वो कोई और ले जाएगा। और जिसने तबारक के साथ अपने आप को जोड़ा, फिर अल्लाह की ज़ात उसके लिए सारे मामलात को बाबरकत कर देती है। अब इतनी प्यारी जब ज़ात है जिसके हाथ में बरकतें, जो खालिक, जो मालिक, जिसके हाथ में बड़े बड़े सूरज, चांद, सितारे मौजूद हैं, जो खल्क और अमर का यकता मालिक है, फिर उसके लिए करो क्या, उसका क्या मामला होना चाहिए। कहा उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, तुम पुकारो फिर अपने रब को गिड़गड़ा कर और खुफिया तरीके से मांगो उससे, क्योंकि बादशाह है ना, पता चल गया ना सब कुछ उसके हाथ में। तो दर्रो क्या है, दर्रा से, दुरु से, यानी आजजी के साथ गिड़गड़ा कर, और खुफिया, खुफिया तरीके से दुआ की कबूलियत के अब यहाँ तरीके बताए जा रहे हैं। इतना बड़ा रब है, तुम उसके सामने आजिज हो जाओ। इन्नहु ला युहिब्बुल मुतदीन, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। आप देखिए कि यहाँ तौहीद के तस्करे के बाद आगे कुछ बातें शिर्क की आ रही हैं, और शिर्क में से सबसे मारूफ किस्म का शिर्क जो है ना, वो शिर्क फिर दुआ है, दुआ के मामले में शिर्क। इस पर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अलग से एक पूरी बुक पढ़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो, और मोहलत मिली कोर्स के वक्त में अगर गुंजाइश हुई, कि दुआ के बारे में इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि ये भी मसला इस वक्त इस्लाह तलब है। लेकिन यहाँ चुपके से इशारा कर दिया कि अल्लाह को आजजी और तजर्रो के साथ पुकारो, दुआओं की कबूलियत के लिए इंसान के अंदाज, उसके सोच में बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत होती है। और दुआ का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में आता है कि किसी को अपनी हाजत रवाई के लिए पुकारना, और याद करने के लिए भी दुआ का लफ्ज़ आता है। दोनों मानी है कि अपने रब से अपनी हाजात तलब करो और इबादत के तौर पर अपने रब को पुकारो, दुआएं भी अल्लाह से मांगो और इबादत भी उसी की करो। और जो तजर्रो का लफ्ज़ है, ये एज़्ज़ और इनकिसारी और इजहार तजल्लुल के लिए आता है, और खुफिया के मानी पोशीदा के मानों में आते हैं। दो अहम अदब पता चल गए कबूलियत दुआ के, कि अपने आप को आजिज रखो, हुक्म ना दो, अल्लाह के आगे रोब ना डालो, धमकियाँ ना दो अल्लाह को, तूने ना दिया तो मैं ये कर दूंगा, तूने ये कर दिया तो वो कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। आजजी, लबो लहजा, तवाजो, हैबत हो, दिल कांप रहा हो, जैसे किसी बड़े के सामने जाते हैं। वैसे सोचिए कि अल्लाह के सामने जब जाते हैं, जो लफ्ज़ जुबान से जाते हैं वो क्या है। हमारे यहाँ अमूमन आज दुआ मांगने का एक रिवायती तरीक़ा है। इमाम साहब मस्जिद में नमाज ख़त्म होते ही हाथ उठा के चंद अरबी की दुआएं मांगते हैं और लोग आमीन आमीन कहकर आ जाते हैं और कहते हैं दुआ मांग ली। तो पूछे अल्लाह के बंदे क्या मांगा, कहना ये इमाम साहब से पूछो, मुझे तो समझ ही नहीं आती, ये दुआ नहीं होती। दुआ के लिए बहुत ज़रूरत है कि इंसान अपने अकीदे को, अपनी सोच को ठीक करे, जो बोल रहा है वो समझे। यहाँ दुआ की रूह बता के बता दिया, लेकिन अहादीस में हमें बहुत सारे अदब मिलते हैं दुआ के। मसलन गलूफ ना किया जाए। एक शख्स को आपने दुआ मांगते देखा, कहने का अल्लाह ताला मुझे जन्नत के बिल्कुल बीच में दाईं तरफ मुड़ते ही एक सफ़ैद मोती का महल दे। अल्लाह के नबी ने कहा इस शख्स ने दुआ मांगने में ज़्यादती की। एक शख्स आया, बद्दू था, आपके पास से जाने लगा, कहता है अल्लाह जन्नत सिर्फ मुझे दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे। आपने कहा तुम्हें पता है कि ये शख्स ज़्यादा कम अक्ल है या इसका ऊंट। ये कुछ ना करें, ज़्यादतियाँ ना करें दुआ में। फिर नामुमकिन बात की दुआ नहीं करनी चाहिए। मतलब आप 40 से ऊपर की हैं और आपके अल्लाह मुझे फिर 20 साल की कर दे। आलम खल्क के तकाजे सामने रख कर दुआएं मांगो। कोई आपने आपको ये कह दे कि मैं औरत में मर्द बन जाऊँ, कोई अपने आप को इस तरह पेश कर दे कि अल्लाह करे कि मैं खाना काबा की इमाम। हम औरतें तो नहीं बन सकती, कोई मर्द ही अपने आप को कह दे, अच्छी दुआ तो कर सकते हैं। यानी कोई अनयूजल बात करना जिसमें वक्त से पीछे जाए, वो चीज़ वो दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह दुआ में ज्यादती एक और है मोतदीन के नाते से, कि हराम की दुआ ना करें। मैं सोचती हूँ जिनके कारोबार में कुछ ऐसी हराम की चीज़ें होती हैं, उनकी बीवियाँ क्या दुआ करती होंगी। अल्लाह खूब शराब बिके। और ख़ुद किसी ने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, कि कारोबार ऐसा, तो कहती थी कि दुआ मांगने को ही नहीं दिल जाता। क्या दुआ मांगे, कि मेरा पब चले। आप सोचें हम नाफरमानी की दुआएं मांग के कितना एक अपना गलत इमेज पेश करते हैं। फिर इसी तरह ज्यादती करना ये भी होता है कि मायूस होकर दुआ मांगना ना छोड़ दे। फिर आगे दुआ के साथ ही फसाद की बात है, तो इससे भी इंशाल्लाह ताला कुछ बातें समझ आती हैं कि दुआओं के अंदर कमी बेशी से बाज़ दफ़ा फसाद होने लगता है। एक कॉल आपको सुना देती हूँ हज़रत हसन बसरी का। कहते हैं कि एलानिया और जहरन यानी ऊंची आवाज़ से दुआ करने में और आहिस्ता और पस्त आवाज़ करने में 70 दर्जे का फ़र्क है। बाद सलफ सालहीन की आदत क्या थी कि जिक्र और दुआ में बड़ा मुजाहिदा करते थे और अक्सर मशगूल रहते थे, मगर कोई इनकी आवाज़ ना सुनता था और उनकी दुआएं उनके और उनके रब के बीच में होती थी। बाज़ लोग पूरा कुरान पढ़ चुके थे, हाफिज हो चुके होते, तिलावत करते, किसी को खबर ना होती, यानी वो अपने लिए करते थे। बाज़ रातों को अपने घरों में तवील नमाजें पढ़ते और लोगों के सामने बिल्कुल मुख्तसर पढ़ते ताकि लोगों को पता ना चले। इब्ने जुरैच हैं, कहते हैं कि दुआ में आवाज़ बुलंद करना और शोर करना मकरूह है। अबू बकर जसास हैं, वो कहते हैं कि शायद से पता चलता है कि दुआ का आहिस्ता मांगना बनिस्बत इजहार के अफजल है। और यही बात हज़रत इब्ने अब्बास और हसन बसरी से भी मिलती है। हाँ, एक तो ऐसी है कि जिसके बाद ऊंची आवाज़ से आमीन कहना सुन्नत से साबित है और वो सूरत अल-फातिहा है। तो क्या पता चलता है कि दुआ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी बेशी है हमारे, और इस मौजू पे भी बहुत सारे लोग गर्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम बेहतरीन तरीके से दुआओं को मानने वाले और ऐसी दुआ मांगे कि कम अज़ कम हमें ख़ुद तो यकीन हो कि जो हमने मांगा है अल्लाह की ज़ात ने उसको वाकई कबूल किया है। बस तो बिल्कुल ऑर्डर वाला, हुक्म वाला अंदाज रखते हैं, तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं है।